अध्याय 9 जैन कवियों के श्रृंगार और प्रेम भावना। जैन काव्य धार्मिक माने जाते हैं, किंतु जिन लोगों को यह देखना होगा कि धार्मिक काव्यों में श्रृंगार का सम्मिश्रण कैसे होता है, वे कृपा कर इन धार्मिक जैन काव्यों को देखें। जैन कवियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनमें जीवन विरक्ति बहुत अधिक मात्रा में है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसी ओर संकेत करते हुए लिखा है कि यूनाइटेड कामा साधारणतया जैन साहित्य में जैन धर्म का ही शांति या वातावरण व्याप्त है। संत के हृदय के श्रृंगार कैसा? जैन काव्य में शांति या श्रम की प्रधानता है अवश्य, किंतु वह आरंभ नहीं परिणति है। संभवतः पूरे जीवन को श्रम या विरक्ति का चित्र बना देना प्रकृति का विरोध है। जैन कवि इसे अच्छी तरह जानता है, इसीलिए उनसे श्रम या विरक्ति को उद्देश्य के रूप में मानते हुए भी सांसारिक वैभव, रूप, विलास और कामाशक्ति का चित्रण भी पूरे स्वार्थ के साथ प्रस्तुत किया है। जीवन का भोग पक्ष इतना निर्बल तथा सहज आक्राम में नहीं होता, इसका आकर्षण दुर्निवार्य है। आसक्ति स्वाभाविक, इसीलिए साधना के कृपाण पथ पर चलने वाले लोगों के लिए तो यह और भी भयंकर हो जाती है। भिक्षु ब्रजयानी बन जाता है शैव कपालिक। राहुल जी ने लिखा है कि इनोटेड कामा इस युग में तंत्र मंत्र, भैरवी चक्र या गुप्त यौन स्वातंत्र का बहुत जोर था। बौद्ध और ब्राह्मण दोनों ही इसमें होड़ लगाए हुए थे। भूत प्रेत, जादू मंत्र और देवी देवताओं में जैन भी किसी से पीछे नहीं थे। रहा सवाल वाम मार्ग का, शायद उसका उतना जोर नहीं हुआ, लेकिन यह बिल्कुल ही नहीं था, यह भी नहीं कहा जा सकता। आखिर चक्रेश्वरी देवी कहाँ यहाँ भी विराजमान हुई और हमारे मुनि कवि भी निर्वाण कामनी के आलिंगन का खूब गीत गाने लगे। सिद्ध साहित्य की अपेक्षा जैन साहित्य में स्वरूप सौंदर्य का चित्रण कहीं ज़्यादा बारीक और रंगीन हुआ है, क्योंकि जैन धर्म का संस्कार रूप को निर्वाण प्राप्ति के लिए सहायक नहीं मानता। रूप अदम्य आकर्षण की वस्तु होने के कारण निर्वाण में बाधक है। इस मान्यता के कारण जैन कवियों ने श्रृंगार का बड़ा ही उद्दाम, वासनापूर्ण और क्षोभकारक चित्रण किया है। जड़ पदार्थ के प्रति मनुष्य का आकर्षण जितना घनिष्ठ होगा, उससे विरक्ति उतनी ही तीव्र। श्रमण शक्ति की महत्ता का अनुमान तो इंद्रिय भोग स्प्रिया की ताकत से ही किया जा सकता है। नारी के श्रृंगारिक रूप, यौवन तथा तज्जन्य काम उत्तेजना आदि का चित्रण इसी प्रकार बहुत सूक्ष्मता से किया गया है। मुनि स्थूल भद्र पाटलिपुत्र में चौमासा बिताने के लिए रुक जाते हैं। इनके रूप और ब्रह्मचर्य से तेजोदीप्त शरीर को देखकर एक वेश्या आसक्त हो जाती है। अपने सौंदर्य के अप्रतिम संभार से मुनि को वशीभूत करने के लिए तत्पर उस रमणी का रूप कवि इन शब्दों में साकार करता है। कन्न जुअल जसु ललहंत किर मयण हिंडोला, चंचल चपल तरंग चंग जसु नयन कचोला, सोहय जासु कपोल पाली जरभु गाली मसूरा, कोमल विमल सुकंठ जासु वाजय सखतूरा। प्रकंपित कर्ण युगल मानो कामदेव के हिंडोले थे, चंचल उर्मियों से आपूरित नयन कचोले, सुंदर विषैले फल की तरह प्रफुल्लित कपोल पाली, शंख की तरह सुडोल सुचिक्कण निर्मल कंठ। उसके उर्वज श्रृंगार के स्तबक थे, मानो पुष्पगंधा कामदेव ने विश्व विजय के लिए अमृत कुंभ की स्थापना की थी। तुंग पयोधर उलसई श्रृंगार थपक्का, कुसुम वाणनीय अमीय कुंभ फिर थापड़ मुक्का। कहीं कुछ प्रिय आगमन के अवसर पर मंगल कलश बनते हैं, कहीं विजय प्रयाण के अवसर पर। नवयौवन से विहसती हुई देह वाली प्रथम प्रेम से उल्लसित रमणी अपने सुकुमार चरणों के आशंजित पायल की रुंझुन से दिशाओं को चैतन्य करती हुई मुनि के पास पहुंची तो आकाश में कौतुक प्रिय देवताओं की भीड़ लग गई। वेश्या ने अपने हाव भाव से मुनि को वशीभूत करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मुनि का हृदय तप्त लोहे की तरह था, उसके बात से विध न सका। जिसने सिद्ध से प्रणय कर लिया और संयम श्री भोग में लीन है उसे साधारण नारी के कटाक्ष कब डिगा सकते हैं। मुनिवय जम्पय वेश सिद्धि रमणि परिणेवा मनु किनव संयम शिरीशो भोग रमेवा। यह है जैन कवि की अनाशक्त रूपाशक्ति। वह तिल तिल जुटाकर सौंदर्य के जिस ऐन्द्रजालिक माया रूप का निर्माण करता है उसी को एक ठेस से बिखरा देने में उसे कभी संकोच नहीं होता। प्रेम के प्रसंगों में ऋतु वर्णन का प्रयोग प्रायः होता है। यह वर्णन उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उद्दीपनगत प्रकृति चित्रण प्रायः प्रथा प्रथित रूढ़ियों में आक्रांत होता है। उपकरण प्रायः निश्चित है। उन्हें के आधार पर प्रकृति को इतना आकर्षक और रुचिकर बनाना है कि यह निश्चित भाव को दीप्त कर सके। ऐसी अवस्था में प्रायः वस्तुओं की नाम परिगणना तो हो जाती है किंतु उद्दीपन का कार्य भी पूरा नहीं होता। यानी वह प्रकृति वर्णन सहृदय के मन को रंच मात्र भी नहीं छू पाता। जिन पद्य सूरी ने थूलिभद्द भाग में वर्षा का वर्णन किया है यह वर्णन वस्तु परिगणना पद्धति का ही है, इसमें संदेह नहीं। किंतु शब्दों का चयन कुछ इतना उपयुक्त है कि प्रकृति का एक सजीव चित्र खड़ा हो जाता है। ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग प्रकृति के कई उद्दाम उपकरणों को रूपाकार देने में सहायक हुए हैं। झिरी 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 मेरे ए बे हाँ बरिसंत खल हल खल हल खल हल ए बदला बहंत जब 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 ए बिजुलिया झंकई थर 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 ए बिरहणी मणुकंपई महुर गंभीर सरेड़ मेह जिमि जिमि जगाजंते पंच बाण नील कुसुम बाण तिम तिम साजंते जिमि जिमि केतकि मन महंत परिमल बिहसावई तिमि कामी चरण रज्ञि निज रमणी मनावई। उसी प्रकार रेवीनाथ चौथाई में नेमी चौपाई में नेमी और राजवती के प्रेम का अत्यंत स्वाभाविक और संवेद चित्रण किया गया है। पारिवारिक प्रेम की इस पवित्र वेदना में किस सहृदय का मन द्रवीभूत नहीं हो जाता। मधुमास के आगमन पर पवन के झकोरों से वृक्षों के जीर्ण पत्ते टूट कर गिर पड़ते हैं, मानो राजल के दुख से वृक्ष भी रो पड़ते हैं। चैत में जब नव वनस्पतियाँ अंकुरित हो जाती हैं चारों ओर कोयल की टहकार गूंजने लगती है। कामदेव अपने पुष्प धनों से राजल के हृदय को बेदने लगता है। फागुन वागुन पन्न पडंत राजल दुख की तरु रोयंत चैत मास वण साय पंगुरय वणि वणि कोयल टहका करय पंचवाण करि धनुष धरे बेझड़ बाड़ी राजल दे जय सखी मातेउ मास बसंत इड़ी झिल झई जय हुत कंत। किंतु माधवी क्रीड़ा के लिए लालायित राजल का पति नहीं आता। ज्येष्ठ का उत्तप्त पवन धू धू का चलने लगता है। नदियां सूख जाती हैं। चंपालता को पुष्पित देखकर नेह पगी राजल बेहोश हो जाती है। जिठ बिरह जिमित तप्पर सूर क्षण वियोग सिय नई पूर पिख्यु फुल्ले चंपय बिल्ली राजल मूर्छ नेह गेहिल्ली। जैन कवि पौराणिक चरित्रों में भी सामान्य जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की स्थापना करता है। उसके चरित्र अवतारी जीव नहीं होते, इसलिए उनके प्रेमादि के चित्रण देवत्व के आतंक से कभी भी कृत्रिम नहीं हो पाते। वे एक ऐसे जीवात्मा का चित्रण प्रस्तुत करते हैं जो अपनी आंतरिक शक्तियों को वशीभूत करके परमेश्वर पद को प्राप्त करने के लिए निरंतर सचेष्ट है। उसकी ऊर्ध्वमुखी चेतना आध्यात्मिक वातावरण में सांस लेती है, किंतु पंख से उत्पन्न कमल की तरह उसकी जड़ सत्ता सांसारिक वातावरण से अलग नहीं है। इसीलिए संसार के अप्रतिम सौंदर्य को भी तिरस्कृत करके अपना साधना मार्ग पर अटल रहने वाले मनु के प्रति पाठक अपनी पूरी श्रद्धा दे पाता है। जैन श्रृंगार वर्णन के इस विवरण से इतना स्पष्ट हो जाता है कि धार्मिक काव्यों में जिनका मुख्य उद्देश्य भक्ति का प्रचार था श्रृंगार कभी उपेक्षित नहीं रहा, बल्कि इन वर्णनों से तो इसकी अतिशयता का भी पता चलता है। नक्श तथा रूप चित्रण। रीतिकाल की शैली को यदि एकदम संकुचित अर्थ में कहना चाहें तो नक्श चित्रण और नायिका भेद की शैली कह सकते हैं। परवर्ती संत साहित्य में भी इस प्रकार की शैली का प्रादुर्भाव हो गया था। एकदम रूढ़ अर्थ में उसे ऐसा न भी माने तो भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि भवभूति, माघ, श्रीहर्ष आदि की कृतियों में नक्षिक वर्णन अथवा मानव रूप चित्रण ज्यादा अलंकरण प्रधान और विलक्षणता बोधक होने लगा था। आचार्य शुक्ल ने नक्षिक वर्णनों की अतिवादी परिणति की निंदा करते हुए मनुष्य के सहज रूप के चित्रण की विशेषता बताते हुए कहा है कि यूनाइटेड कामा आकृति चित्रण का अत्यंत उत्कर्ष वहाँ समझना चाहिए जहाँ दो व्यक्तियों के अलग अलग चित्रों में हम भेद कर सकें। यूनाइटेड कामा शुक्ल जी ने इसी प्रसंग में रीतकालीन कवियों की शैली को अत्यंत निकृष्ट बताते हुए लिखा है कि यूनाइटेड कामा यहाँ हम रूप चित्रण का कोई प्रयास नहीं पाते, केवल विलक्षण अंगों की सौंदर्य भावना से उत्पन्न सुखानुभूति में अवश्य वृद्धि पाते हैं, पर रूप निर्दिष्ट नहीं होता। यूनाइटेड कॉमा बंद। नक्षिक वर्णन विद्यापति या सूर तथा उनके अन्य समसामयिक ब्रज भाषा कवियों में मिलता है। कहीं कहीं तो इस चित्रण में वस्तुतः रूढ़ियों के प्रयोग की यत्ता हो जाती है। सूरदास के अद्भुत एक अनूप भाग वाले प्रसिद्ध नक्षिक चित्रण को लक्ष्य करके शुक्ल जी ने लिखा है कि यूनाइटेड कॉमा इस स्वभाव सिद्ध अद्भुत व्यापार के सामने कमल पर कदली, कदली पर कुंड, शंख पर चंद्रमा आदि के प्रौढ़ोक्त सिद्ध रूप का अतिशयोक्त की कागजी दृश्य क्या चीज है। हमें यहाँ पर विचार करना है कि विद्यापति सूरदास आदि की कविताओं में जो इस प्रकार की कवि प्रौढ़ोक्त रूप का अतिशयोक्त की अधिकता दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है। मैंने ऊपर निवेदन किया है कि संस्कृत के परवर्ती काव्यों में भी इस प्रकार के अलंकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, किंतु नक्षिक वर्णन की शैली का विकास इस अतिशयक्तावादी शैली का परवर्ती जैन अभ्रंश काव्यों तथा आरंभिक ब्रजभाषा की रचनाओं में भी दिखाई पड़ता है। थूलिभद्ध फागों में वेश्या के रूप वर्णन में यद्यपि शैली रूढ़ है इसमें संदेह नहीं, किंतु लेखक ने उसे विलक्षणता प्रदर्शन के लिए नहीं अपनाया है। यौवन संपन्न उरुजों की उपमा वसंत की पुष्पित फूलों को सबक से देना इस प्रकार का अलंकरण ही कहा जाएगा, किंतु यह अलंकरण रूप चित्रण में बाधक नहीं है, बल्कि उसे और भी अधिक उद्भाषित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। पुष्पदंत ने नारी सौंदर्य का जो चित्रण किया है वह अभूतपूर्व है। पुष्पदंत के चित्रण शुक्ल जी द्वारा प्रतिष्ठापित मानदंड के अनुकूल है। उन्होंने न केवल दो नारियों के रूप में अंतर को स्पष्ट किया अंकित किया है, बल्कि भिन्न भिन्न प्रदेशों के नारियों के रूप, स्वभाव तथा व्यवहारों का ऐसा सूक्ष्म वर्णन किया है जैसा पूर्ववर्ती काव्यों में कम मिलेगा। हिंदी काव्यधारा के पृष्ठ 200 पर दिए गए पद्यांश में नारी सौंदर्य का चित्रण देखा जा सकता है। हेमचंद्र संकलित अभ्रंश दोहों में भी इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं। स्फुट मुक्तक होने के कारण इनमें सर्वांगीणता नहीं दिखाई पड़ती, किंतु सूक्ष्मता का स्पर्श तो है ही। जैसे नेत्रों के लिए वर्णन देखिए, जिम जिम वंकीय लोहण निरु सामल सिखे तिव तिव कम्महन निय सरखर पत्थर तिखे। ज्यो ज्यो गोरी अपनी बाकी आँखों की भंगिमा सिखाती है, वैसे ही वैसे मानो कामदेव अपने बाणों को पत्थर पर तीखा करता जाता है। नक्षिक वर्णन का और अधिक प्राधान्य परवर्ती रचनाओं में दिखाई पड़ता है। प्राकृत पैंगलम की ब्रजभाषा रचनाओं में ऐसे वर्णन विरल नहीं है जो किसी काव्यों के नक्षिक चित्रण के प्रसंग में से छांटे गए हों। राष्ट्र काव्यों में वर्णित नक्षिक शैली का प्रभाव सूर आदि पर कम न पड़ा। संदेश राशक में नायिका के रूप का चित्रण रूढ़ शैली का ही है, किंतु उसमें उपमानों के चयन में कवि की अंतर्दृष्टि और सूच का पता चलता है। पथिक से विदेश स्थित पति को संदेश भेजते समय उसके रूप की क्षण क्षण परिवर्तित दशा का कवि ने स्थान स्थान पर बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। छायंति कह कहव सलिज्जवर णीय करही कड़क कलश झंपति रम इंदिवरही तो आसन्न बहुत सगिर गिरवयनी कवियों सद्य सविलासु करुण दीहर नयनी। संदेश राशक इस विवरण को थोड़ा विस्तार से देना आवश्यक हो गया था, क्योंकि लोग प्रायः ऐसा समझते हैं कि भक्ति काव्यों में श्रृंगार का कोई स्थान नहीं। जो लोग भक्ति और श्रृंगार का इतना बड़ा विभेद लेकर विद्यापति के काव्य का अध्ययन करते हैं उन्हें वे घोर श्रृंगारिक प्रतीत होते हैं और वे भी किंतु श्रृंगारिक होने के कारण ही उनकी कविताओं में भक्ति भाव का अभाव नहीं प्रकाशित होता। दूसरा प्रश्न है नक्षिक वर्णन। नक्षिक का वर्णन उपयुक्त विवेचन क्या इस बात के प्रमाण नहीं कि यह परिपाटी मध्यकालीन काव्य की सर्वमान्य और सर्वत्र गृहित प्रणाली है। इसके प्रभाव से संस्कृत प्राकृत और भाषा का कोई कवि नहीं बचा। यहाँ तक कि श्रम और विराग जिन कवियों का उद्देश्य रहा है वे भी नक्षिक सौंदर्य का वर्णन परंपरा विहित परिपाटी के अंदर ही करते थे। जैन कवियों तक ने नक्षिक वर्णन को इसी ढंग से अपनाया था। विद्यापति ने नक्षिक वर्णन पर कामशास्त्र सामुद्रिक आदि का भी प्रभाव कम न पड़ा। वैसे संपूर्ण नक्षिक वर्णन की पूरी परिपाटी चाहे वह जैन बौद्ध या हिंदू किसी भी कवि द्वारा अपनाई गई हो कामशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र के नारी लक्षणों से बहुत प्रभावित रही है। विद्यापति ने यदि इस परंपरा को अपनाया तो यह कोई अपराध नहीं है, न तो इसके आधार पर उन्हें श्रृंगारिक कहकर टाला ही जा सकता है। नक्षिक वर्णन कदर्थना की वस्तु नहीं है, बुरी है नक्षिक वर्णन की निर्देश या रूपोलोपपूर्ण आसक्ति।